जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 22 23 एवं 24 पर 13 दिसंबर 2016 को इस्कॉन सूरत गुजरात में दिया गया।
गोपी जाना वाला भाई भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत पूछा जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए और फिर प्रश्न के उत्तर में तुम्हारा तो स्वामी छोड़ दिया था भगवान का आदेश बनाना चाहिए आज उसको पढ़ रहा हूँ जो व्यक्ति ध्यान बंदी करना चाहे लेकिन प्रकार के बंद मन को करने चाहे आप सब
करना
चाहते हो आप सब ये सब आप नहीं करना चाहते सुने जल्दी आदि बंदी करना चाह रहे हैं जो तेरी आप
अनुवाद आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो। महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन करें। भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करें। बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करें और ऐसे करते हुए दूसरों की निंदा न करे। भक्तों को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वेधता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। तात्पर्य शुद्रोपाचार्य के द्वारा भक्त वास्तव में साधु पुरुष होते हैं। साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है। जो लोग भक्ति पथ में चलने या भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक हैं उन्हें पहले अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए।
अब सब भगवान के धाम लौटने के इच्छुक हो या सूरज ज्यादा अच्छा लगता है आप हो गए सूरज छोड़कर भगवान के नाम जाए आप सूरज में रहना चाहते हैं भगवान के नाम सूरज में इतना सुख है। अच्छा ठीक है।
साधु को तितिक्षण कारुणी कहा गया है। भक्त को सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि उसे कोई चोट लगे तो उसे सहन लेना चाहिए, किंतु यदि किसी अन्य को चोट लगे तो भक्त को यह सहन नहीं होता है। सारा संसार हिंसा से पूर्ण है, अतः भक्त का पहला कार्य है कि वह इस हिंसा को रोके जिसमें पशुओं का वध सम्मिलित है। भक्त न केवल मानव समाज का अपितु समस्त जीवों का मित्र होता है, क्योंकि वह समस्त जीवात्मों का भगवान की संतों के रूप में देखता है। वह केवल अपने को ईश्वर का पुत्र बताकर तथा अन्यों को यह समझ कर कि उनमें आत्मा नहीं है मारे जाने नहीं देता। भगवान का भक्त कभी भी ऐसी विचारधारा का पोषक नहीं होता। सुयदा सर्वदेहिनाम असली भक्त समस्त जीवात्मा का मित्र होता है।
इस प्रकार भौतिक जीवन में हर व्यक्ति की इच्छा रहती है मैं उन्नति करूं। सच बात है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी इच्छा रहती है अच्छे नंबर आए। अगर आप नौकरी कर रहे हो आपकी इच्छा रहती है कि और संख्या बढ़े। अगर व्यापार कर रहे हो तो इच्छा रहती है और नफा बढ़े। ठीक बात है। उसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ते हो हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि हम उन्नति करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करोगे तो अंत में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और उन्नति करने के लिए साधन संग की आवश्यकता है। शास्त्र में 50 श्लोक हैं, लगभग हर तात्पर्य में ये पढ़ते हो साधु संग में रहना चाहिए। साधु संग में रहोगे तो सदा सुनते रहोगे जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए। और आप भगवत में देखते हो कि जब भी भगवान के भक्त मिलते हैं उनका विषय क्या रहता है, हम उन्नति कैसे कर सकते हैं। जैसे चौथे अध्याय में जिस कर्म में पृथ्वीराज तुम्हारा से मिलते हैं, पृथ्वीराज जैसे हम कह रहे थे सुबह भगवान के शक्ति वैसे अवतार है अथवा अवतारों से कहते हैं, क्योंकि दिव्य धाम से प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो कुमारा उनके पास क्या खास सिद्धियां थी, वो किसी स्थान में भी जा सकते थे और उनके पास ऐसी योगिक सिद्धि थी कि उन्होंने अपने शरीर को बड़े होने से रोक दिया था। थे वो भी आत्मज्ञानी। जब पृथ्वीराज उन्हें मिले उन्हें बड़ा आदर दिया, उनके चरण धोए, उनसे पूछा ये बताइए जीवन का क्या लक्ष्य है। तो कुमार सनत कुमार पृथ्वीराज के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं। ये जो भगवत का उपदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। भगवत का जो ज्ञान है सबसे उत्तम ज्ञान है। और आपको खुशी होगी जानकर कि आज श्रीमद् भागवतम को आप लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में प्राप्त कर सकते हो। चीन हो रशियन हो और सारे विश्व में पहली बार इतिहास में लोग ये भागवतम को पढ़ रहे हैं। भगवतम में हर विषय का ज्ञान है, हर प्रश्न का उत्तर है। तो इस श्लोक में खास करके पृथ्वी सनत कुमार ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहे उनमें किन प्रकार के गुण होने चाहिए, किन प्रकार के लक्षण होने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, सब विषयों का हो का ज्ञान यहाँ प्राप्त हो रहा है। पर हमने शोक चुना इसलिए क्योंकि हमें पता है अगर आप अपने दिखाना चाहते हो और ये भी चीज जानना चाहोगे क्या भाव हमें अनुकूल करना चाहिए, सबसे पहले कहते हैं अहिंसा, अहिंसा का नॉन वायलेंट है, किसी को कष्ट नहीं देना, भक्ति भाव रहता है, एक चींटी को भी कष्ट नहीं दे। आप श्रीमद् भागवतम में पांच स्कंद में जदभारती की कथा पढ़ते हो, अब जदभारती की कथा से परिचित हो, वहां ऋषभ देव पूरे पृथ्वी के राजा थे, भगवान के अवतार थे, ऋषभ का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, उनके 100 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, महान बात जिन्होंने इतना सुंदर शासन किया, प्रजा इतनी सुखी थी, पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हो गया था। आज जब हम भारत की चर्चा करते हैं तो हम वो ही भारत देखते हैं जिसकी बाउंड्री आज आप मैपों में देखते हो, एक समय पूरी पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष, एक समय था जब इंडोनेशिया आज एक मुसलमान देश माना जाता है, जहां की वैदिक संस्कृति का बड़ा गहरा प्रभाव था, आज भी इंडोनेशिया में रामायण के ड्रामा होते हैं, वहां राम की लीलाओं का वर्णन होता है। तो इस भारत महान शासन कर रहे थे, फिर वो जिम्मेदारी छोड़कर जंगल में गए भगवान का चिंतन करने के लिए, जहां की एक समय उन्होंने देखा एक हिरनी का पीछा शेर कर रहा था, वो हिरनी अपनी जान को बचाने गई, घर में बच्चा था, बच्चा गिर गया पर मां मर गई, महाराज भारत ने सोचा शेर ने भगवान की इच्छा कि मैं इस पशु की देखभाल करूं, उस हिरन के प्रति हिरनी के प्रति बहुत गहरा आकर्षण हो गया, इतना गहरा कि एक दिन खोज से खोजते उनकी मृत्यु आ गई। भगवद गीता में कहा गया है, भगवद गीता में जीने का मरने का दोनों का उपदेश दिया जाता है, उदाहरण के लिए कहा गया है यम यम आपी स्मरण भवान, जहां का मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का क्या होगा, देह आपको प्राप्त होगा। मान लो आप भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे हो तो आप संभव है आध्यात्मिक वातावरण में जन्म लो रहे, मान लो आप सोच रहे हो वो इतनी बड़ी कोठी मैंने बनाई यहाँ केवल 25 साल मिले रहने को और 4-5 साल रहने को मिलना चाहिए था, तो वहां ही जन्म लोगे पर माने के रूप में नहीं के सुर में कोई तुझ रूप से बस बोला नहीं चाहता था कृष्ण तो ये इसलिए शासन का उपदेश है, इस प्रकार की योजना करो कि अंत्य नारायण स्मृति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सको। प्रकृति के नियम ऐसे हैं जिस कार्य में आप लगे रहोगे मृत्यु के समय भी संभव है वहां यहां पर दिमाग होगा, अगर आप आध्यात्मिक कार्य में जुड़े हो ये संभव है मृत्यु के समय भी उसी विषय में आप मन रहेगा। तो महाराज भारत क्योंकि वो सोच रहे थे वो हिरनी का अगला जन्म उन्हें इस पक्ष के रूप में स्वीकार करना पड़ा, तो क्योंकि भक्ति भी की थी, भक्ति का लाभ सनातन रहता है, अगला ज्यादा देर नहीं रहना पड़ा ऐसे। और फिर उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण खानदान में, जिनमें उनका नाम था जत भारत। जत भारत समझ पाए जो गलती उन्होंने की थी, और उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब मैंने वो गलती फिर से नहीं करनी। इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक बार आप गलती करोगे बुद्धिमान हो तो उसको फिर से करने से बचोगे। तो जत भारत का व्यवहार था जैसे वो घूंघे थे और बहरे थे, तो लोग उन पर हंसते थे। बड़ी सुंदर कथा है उनकी, जो भगवत उनके पांचवें स्कंध में प्राप्त कर सकते हो। तो जत भारत को एक समय महाराज रघुगणा की पलकी को उठाना पड़ा। प्राचीन समय में जो धनी राजा इत्यादि होते थे, मोटरें तो थी नहीं उस समय, उन्हें पलकी में उठाया जाता था, साधारण व्यक्ति को नहीं केवल राजाओं को। तो महाराज रघुगणा कपिलदेव आश्रम में जा रहे थे कथा सुनने के लिए, उनमें आध्यात्मिक भाव था, उन्हें देर हो रही थी। आजकल अगर आप मोटर में जा रहे हो देर हो रही है, दबा लेते हो तेज चले जाते, जब पलकी में उठा रहे हो तो उसकी सीमा है। तो भक्तों राजा कह रहा था जल्दी चलो देर हो रही है मुझे। तो सेवकों ने देखा जत भारत, वो लंबे थे, बड़े कंधे, बड़े हाथ, और उसे कहा राजा को उठाने में सहयोग दो। उनका भाव ये था कि इस व्यक्ति को जोड़ने के साथ हल्की और तेजी से जाएगी, पर क्या परिणाम हुआ, तेजी से जाने के बजाय ज्यादा धीमे जाने लगी, जिसके कारण राजा क्रोधित होकर कहने लगा तुम लोग समझते नहीं हो मुझे देर हो रही है। तो जैसे उन्होंने कहा हाँ इसका कारण है ये नया व्यक्ति जैसे हमें हमने जोड़ा ही, ये दोषी है, ये बहुत धीमे चल रहा है। क्यों, बाकी तो जो पलकी उठा रहे थे शुद्ध भाव के थे, पर जत भारत अपने पैरों को पृथ्वी पर रखने से पहले देखता था क्या कि कोई चीटी तो नहीं आगे तीन कदम तक, इतने सावधानी से चल रहा था, जिसके कारण महाराज रघुगणा से डांट पड़ी उन्हें। शुरू में तो सह लिया जत भारत ने, फिर जब जत भारत बोलने लगे तो महाराज रघुगणा जिनके पास दिव्य ज्ञान था उन्होंने तो वो समझ गए ये व्यक्ति कौन है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है। फलकी से नीचे उतरे उनके नगर हुए, जत भारत ने कहा मुझे किसी विषय का डर नहीं है, इंदिरा के थंडर बोल्ट का भी डर नहीं है, केवल एक ही विषय का डर है, क्या वैष्णव अपराध का। तो जत भारत की कथा में आप देखते हो कोई उनका इतना भाव था, उत्तम भाव, कि किसी चीटी को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। ये है साधु का भाव, जो उन्नति करना चाहते हैं उनमें अहिंसा का भाव होना चाहिए। बुद्धा जी ने अहिंसा का उपदेश दिया, और तो बुद्धा ने देखा संसार में इतना कष्ट है, क्लेश है, राजा थे उन्होंने देखा कि चारों तरफ क्लेश है, उन्होंने सब कुछ त्यागा और अहिंसा का उपदेश दिया। पर आज आप क्या देखते हो, उनके प्रतिनिधि हर प्रकार का अशुभ। तो जो साधु है वो इसमें अहिंसा का भाव रहता है। आप चैतन्य चरितमृत में कथा पढ़ते हो, एक समय नारद मुनि जंगल से गुजर कर जा रहे थे, उन्होंने देखा अनेक घायल पशु, पूछा कौन है इसका कारण। एक शिकारी था बहुत ही भयंकर, जिसका नाम था, क्या था नाम, मृगारी। मृगारी शिकारी ने कहा मैं हूं इनका कारण। मृगारी जिसे सारा विश्व डरता है, नारद मुनि के शुद्ध साधु है, उन्होंने कहा कि आज तुम जानते हो इनका क्या परिणाम होगा। नारद मुनि की संगत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भविष्य में जब नारद मुनि अंगिरा मुनि के साथ गए थे, उन्हें उनके दर्शन में निकले, उन्होंने देखा ये शिकारी जब उन्हें चलने आ रहा, स्वागत करने आ रहा था, इन्हें ध्यान से चल रहा था, ये देख रहा था किसी चीटी बदल पाँव नहीं आ जाए। तो साधु को अहिंसा का पालन करना चाहिए। आगे क्या कहा है, महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। उदाहरण के लिए जो उपदेश आपको प्राप्त होता है इस कर्म में, ये 100% निर्भर है महान आचार्यों की शिक्षा पर। खराबा जी ने हमें एक शब्द नहीं दिया जो कि आप शास्त्र में प्राप्त नहीं करोगे, महान आचार्यों की शिक्षा में प्राप्त नहीं करोगे। जैसे आप जानते हो विदेश जाने से पहले खराबा जी को लगभग 40 सालों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, और फिर जब वो अमेरिका पहुंचे वहां भी पहले साल के लिए बड़ा भारी संघर्ष था। कई उन्होंने कहा स्वामी जी आप अमेरिका को नहीं जानते, कोई आपके संदेश को नहीं सुनेगा, अभी हमारे जैसे कोट पैंट पहनना शुरू कर दो। स्वामी जी ने हमें वही शिक्षा दी जो महान आचार्यों ने दिया है। प्रभु जब तात्पर्य भी लिखते थे भागवतम का, जो तात्पर्य महान आचार्यों ने जो भाव प्रस्तुत किया है उसी भाव को लेकर प्रभु जी ने हमें तात्पर्य दिए। भगवद गीता की रचना जब की, ये निर्भर है बलदेव विद्यापूषण की रचना के ऊपर। जो महान आचार्य हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और इस परंपरा में महान आचार्य ने शिक्षा के आधार पर ही आपको भी शिक्षा दी जा रही है। कई बार सुनने में आता है आपके इस पर मेरा बहुत बंधन है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, बंधन ही बंधन। और लोग कहते हैं हमारे गुरु देखो इतने दयालु हैं, पूरी छूट दी गई है, जो करना करो। ये बात सच है, ये बंधन है। पर ये बंधन क्यों है, हमारी भलाई के लिए। इनके पालन से आप अपने अशुद्ध हृदय को शुद्ध बना पाओगे। आप सब तो यहाँ व्यापारी व्यापारी हो, व्यापारी भाषा में क्या कहते हैं, जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा, ये डायमंड ट्रेड में कहते हो। हाँ सारे हीरे एक ही भाव के नहीं, अलग अलग भाव के, अलग अलग वक्त में। ऊंचा दाम भरोगे ऊंचा माल मिलेगा, सस्ता दाम भरोगे तो सस्ता हीरा मिलेगा। तो जितनी भगवान भी कहते हैं इसी भाव को, ये तमाम प्रबंधन, जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आएगा उतनी मात्रा में उसकी सुरक्षा भी करूंगा। तो महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर हमें चलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, अगर आप उन्नति करना चाहते हो सदा परम भगवान की लीलाओं का क्या करो, स्मरण करो। आप गीता में पढ़ते हो, छठे अध्याय का विषय ध्यान योग, जिसमें भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाओ। जिस व्यक्ति ने मन पर वश कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतोष रहेगा, जिसने मन पर वश नहीं किया सदा अशांत रहेगा। और भगवान क्या कहते हैं गीता ज्ञान में, मन मना भाव मन भक्त हो आगे मन वाचन सत्यम थे मेरा चिंतन करो मेरा भक्त बनो। तो कई बार हम सोच पूछते हैं और भगवान से पूछते हैं कैसे भगवान चिंतन करें, कैसे स्मरण करें। कोई उदाहरण है, यहाँ उपदेश दिया जा रहा है क्या भगवान की लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का वर्णन प्रमाणिक शास्त्रों में है। ये नहीं कि हम भगवान की लीलाओं का को काल्पनिक भाव से स्मरण करें। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम दसवें स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन आप पढ़ते हो, बाल लीला से आरंभ होता है। प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि लोग भक्तों को प्रमाणिक उपदेश दिया जाए, इसलिए प्रभुपाद जी जैसे अमेरिका पहुंचे उन्होंने कृष्ण बुक की रचना की, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे सारे भक्तों को प्रमाणिक उपदेश मिले। तो भगवान की लीलाओं का जब आप भगवान की लीलाओं को पढ़ते हो तो आपको क्या संदेश मिलता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? जब आप भगवान की लीलाओं को पढ़ते हो तो उसे क्या संदेश मिलता है, कोई नहीं संदेश मिलता, क्या संदेश मिलता है क्या? हाँ हाँ राधा चरण आप देखते हो कि भगवान की लीला जो है सब अद्भुत है कि नहीं। जन्मा करवे चावे देव्या मेरा प्रकट होने और प्रकट होना दोनों क्या है। आप जब भगवान की लीला पढ़ते हो तो आप देखते हैं तो अद्भुत है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब भगवान प्रकट हुए इस पृथ्वी पर वासुदेव देवकी के समक्ष, वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्ष के लिए इतनी गहरी तपस्या उठाई थी। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, केवल जो पत्ते गिरते थे पेड़ों से वही खाए 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए। इस तपस्या का भाव क्या था कि उन्हें परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में, ये था उनका भाव। और जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में 4 हाथों के साथ सजे हुए गहने के साथ, माता को पिता को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि मैं प्रकट हो चुका हूं। उनको उनको भय था वासुदेव देवकी के बाकी बच्चों का वध हो गया था। भगवान यकीन दिलाना चाहते हमें पकड़ोगे। और जब माता पिता ने देखा भगवान के दिव्य रूप को 4 हाथों के साथ सजे हुए, उन्होंने वो क्या डर था, क्या डर था उन्हें, डर था क्या, कंस को सूचना मिल जाएगी, कंस को सूचना मिल जाएगी कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, और इस सच्चाई को छुपाने के लिए माता पिता ने क्या कहा, साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो। भगवान ने माता पिता के आदेश के अनुसार तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया और वासुदेव इतने प्रसन्न थे कि भगवान प्रकट हुए हैं उनके खानदान में, कि उन्होंने, वो तो जेल खाने में थे, कैदी थे। एक समय हमारा वृंदावन में प्रोग्राम था जिसमें हमने मथुरा जेल के अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। वो मुगम सिंह प्रवचन में कहने लगा, आपके भगवान ने हमारे जेल में पैदा हुए थे। तो वासुदेव तो जेल में थे उस समय, हाँ कैदी थे, और वो बड़े प्रसन्न थे भगवान प्रकट हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, मानी मन में 10,000 गाय जो सजी हुई थी हीरों के साथ गहनों के साथ दान में दे दिया ब्राह्मणों को। तो कभी आप ऐसी स्थिति में हो कि आप शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते, तो किस माध्यम से कर सकते हो, मन के द्वारा। आप भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी की रचना पढ़ते हो, चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को कहा था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। उन्होंने हमें कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं जिनमें प्रभुपाद जी ने दो ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में। कौन से हैं ये दो ग्रंथ, कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु, इसको प्रकाशित किया नेक्टर डिवोशन के नाम से और श्री उपदेश में। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक कथा पढ़ते हो, एक समय एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण, दिन रात उसका भाव रहता था मैं भगवान के लिए एक महल बनाऊं। तो एक दिन वो एक कथा सुनने गया, जिसमें कथाकार ने कहा, अगर आप ऐसी स्थिति में हो यहां कि आप शरीर से सेवा नहीं कर सकते तो मन से सेवा कर सकते हो। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, मन से सेवा भी हो सकती। ब्राह्मण लौटा अपने घर, मानी मन में उसने एक बड़ा सुंदर मंदिर बना लिया, आगे राधा दाम मंदिर से ज्यादा बड़ा, और राधा दाम मूर्तियों की स्थापना कर ली उसने अपने मंदिर में, और नियमित रूप से रोज 7 बार दिन में आरती करता था। जो पुजारी है वो जानते हैं कि भगवान का रोज अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करते हुए हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। आप कैसे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, नियम के अनुसार भगवान का स्नान करवाने के लिए हमें भारत की जो पवित्र नदियां हैं वहां से जल आना चाहिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, वो अनेक हो, पर ये तो संभव नहीं होगा। हम रोज आपको कहें हरिस्वंग हर मंदिर को आप जाओ रोज गंगा जल लाओ, जमुना जल लाओ, सरस्वती जल लाओ, नर्मदा जल लाओ, कैसे संभव है। और विदेशों में भी मूर्तियां, तो मंत्रों के उच्चारण से आपका सूरत का म्युनिसिपैलिटी का पानी गंगा जल बन जाता है। इसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। और लंदन में लंदन का पानी गंगा जल बन जाता है मंत्र के उच्चारण से, यह है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। तो ये जो ब्राह्मण था इसने कल मन ही मन में सोचा था, अब मैं जा रहा हूं गंगा पर गंगा जल लाने के लिए, मेरे विग्रह का स्नान करने के लिए, और मैं जा रहा हूँ सरस्वती नर्मदा, और मैं सोने के लोटे में पानी ला रहा हूँ भगवान का स्नान करवाने के लिए, और भगवान के लिए बहुत बड़ा भंडारा बनाता था, भगवान को देना चाहिए सबसे अच्छी चीज है ना। कई बार हमारे भाई बहन के, हिंदू भाई बहन के, हाँ भगवान तक हम तो खाएंगे सोने की थाली में, भगवान तो कहते हैं ना पसम पसम पलम स्वयं, हम भगवान को पसम पसम पलम स्वयं देंगे, हम रहेंगे महल में, भगवान रहेंगे कुटिया में, भगवान पसम पसम पलम स्वयं कहते हैं। अगर आपके पास और कोई सुविधा नहीं हो कम से कम बता हर बंदर। तो इस प्रकार अनेक साल बीत गए, ये गरीब ब्राह्मण मन ही मन में अपने विग्रह की सेवा कर रहा था, रोज उनका अभिषेक करता था, भोजन बनाता था, सब अकेले। और एक दिन उसने मन ही मन में खीर बनाई थी, खीर जैसे आप जानते हो, और लोग खीर कितने भक्तों ने खाई है सबको सबको अभ्यास है, खीर को पहले गर्म बनाते हैं ना, फिर जब ठंडा हो जब भोग लगाते हैं। तो ये ब्राह्मण देखना चाहता था खीर ठंडी हुई है कि नहीं, तो मन ही मन उसने हाथ को रखा खीर में, उसका हाथ जल गया, सचमुच जल गया, वो आश्चर्य हो गया था, मैं तो कल्पना कर रहा था। वो परम भगवान ये लीला को देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण आश्चर्य हो गया है कि क्यों नहीं जल गई, भगवान हंसने लगे। तो लक्ष्मी जी भी वहां बैठी थी, लक्ष्मी जी ने पूछा आप क्यों हंस रहे हो, भगवान ने उत्तर नहीं दिया, भगवान ने अपना जहाज भेजा वैकुंठ एयरलाइन और ब्राह्मण को अपने धाम में लेकर आई, कैसे सेवा कर रहा था, काल्पनिक सेवा कर रहा था। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है, वासुदेव जेल खाने में थे पर उन्होंने मन ही मन में 10,000 गायें दान में दे दी, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते, मन में कर सकते हो, तो यहाँ कहा जा रहा है मन के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो जब आप शास्त्रों को पढ़ते हो तो क्या देखते हो, आप देखते हो कि भगवान की जो लीलाएं हैं ये सब अद्भुत लीलाएं हैं। कौन सोच सकता है एक 3 महीने का बच्चा एक राक्षसी का जीवन ले लेगा। जब पूतना गई थी सजी हुई इस भाव के साथ कि भगवान को जहर खिला देगी, उनका ही अंत आ गया। आप भगवान की लीलाओं को देखते हो बिल्कुल अद्भुत है। तो भगवान खेल रहे थे तो जब भगवान घर आए यशोदा माता ने पूछा क्या तुमने आज मिट्टी खाई है, भगवान ने कहा मेरे भाई ने झूठी शिकायत लगाई है। क्यों 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 झूठी शिकायत लगाई थी बालराम ने, कौन बताएगा, कोई नहीं आप नहीं जानते क्यों, भगवान ने कहा खेलते समय हमें उनको हरा दिया था, तो आपसे डांट दिलवाने के लिए झूठी शिकायत भगवान लगा दी, पर अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं मुंह खोलकर आपको दिखाता हूं क्या कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जब भगवान ने मुंह खोला तो माता यशोदा ने क्या देखा, सारे ब्रह्मांड को भगवान के मुंह में, सारे 33 करोड़ देवताओं को ना, आप जब डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बोले करते तो अंदर क्या देखते हैं, केवल वेलकम देखते हैं। सच बात है, अगर डॉक्टर साहब को चमन भी फेंकना पड़ता है क्योंकि आपका मुंह इतना गंदा है, पर जब भगवान ने मुंह खोला तो क्या देखा उनकी माता ने, पूरे विश्व का दर्शन, देवताओं का दर्शन, किस प्रकार 3 गुण के प्रभाव में व्यक्ति आते हैं, किस प्रकार पापों का परिणाम भुगतना पड़ता है, ये सब दर्शन दिया। तो आप कहोगे ये संभव है क्या, भगवान करे हर कार्य संभव है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च विनेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम। ब्रह्मा जी ब्रह्मा संहिता में भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करते हैं, गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अद्वैता, उनके देह और आत्मा में अंतर नहीं, हमारे देह और आत्मा में अंतर है। अच्युता कभी गलती नहीं करते, कल हम भगवद गीता की महिमा का गुणगान कर चर्चा कर रहे थे, गीता का उपदेश भगवान को ने दिया था, सूर्य के देवता विवासवान तो करोड़ों करोड़ों साल पूर्व, और यही संदेश भगवान ने फिर से दिया, कैसे किसे कब कहां पवित्र भूमि में। सब गीता में रोज पढ़ोगे तो भी आप थकोगे नहीं, क्योंकि ये है भगवान का दिव्य ज्ञान, अनंत रूपम अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। जब भौतिकवादी व्यक्ति सुनते हैं भगवान प्रकट हुए भगवान नरसिंहदेव के रूप में, आधे पुरुष और आधे पशु, तो कई भौतिकवादी कहते हैं ये कैसे संभव है, आधे पुरुष आधे पशु, भौतिक दृष्टि से देखोगे तो हाँ असंभव है, पर आध्यात्मिक नेत्रों से देखोगे तो ये समझोगे भगवान के लिए कोई कार्य भी असंभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, आप जब भोग लगाते हो मंत्र के उच्चारण से भगवान से प्रार्थना करते हो, कृपा करके ये भोग का शिकार कीजिएगा, और वो भगवान स्वीकार करते हैं नेत्रों से और कानों से, आप खाते हो अपने मुंह से, राम जब खाते हो आपकी थाली खाली हो जाती है। हाँ सच बात है, बड़ी थाली तो नहीं छोड़ते आप, ये पाप है तो थाली खाली जाती है, और भगवान नेत्रों कानों से खाते हैं तो थाली भरी भी रहती है। तो कई बार मायावादी लोग दोष देते हैं वैष्णव को, देखो इन मूर्खों को कहते हैं भगवान ने खा ली, थाली वैसे कैसे भरी हुई है, तो भगवान खाते हैं नेत्रों से और कानों से। अंग नहीं ऐसा सकलेंडर वृत्ति मानती, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य भगवान कर सकते हैं, आप और हम नहीं कर सकते, तो भगवान खा सकते नेत्रों से और कान से। तो यहां कहा जा रहा है सनत कुमार के द्वारा कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, जैसे कि कार्तिक का महीना भी समाप्त हुआ, तो कार्तिक के महीने में आप दामोदर लीला का गुणगान कर रहे थे, और आपके विग्रह का नाम भी है राधा दामोदर, दामोदर लीला में आप क्या देखते हो, अनेक गोपियां शिकायत कर रही थी मदर यशोदा से, आपका बेटा हमारे घर में आकर क्या करता है, माखन चुराता, और क्या दूध दही सुना माता की सोचती थी मेरा बेटा पड़ोस में क्यों जाता है। सुना माता के पास तो 9 लाख गाय थी नंदमनार के पास 9 लाख गाय सब सजी हुई थी हीरे मोतियों के साथ। तो अंत में लंबी कथा है तो भगवान माता बांधना का प्रयास किया इस भाव के साथ कि उनका शरारती बेटा कंट्रोल में आ जाए। और जब माता ने प्रयास किया सब रस्म में जोड़ कर मानने के लिए क्या देखा सब रस्म क्या क्या लोग छोड़ी थी। हमारे आचार्यों ने इसका वर्णन दिया है इसका अर्थ ये है उंगलियां छोटी भगवान को समझना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर दूसरे का भाव क्या है फिर भगवान की कृपा से आप उन्हें समझ पाओगे। यहां संत कुमार कह रहे हैं अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो क्या करना चाहिए तो अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो यहाँ संत कुमार कह रहे हैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करो भगवान के उपदेश का स्मरण करो। आप भगवतम के पदम करने पड़ते हो जब भगवान प्रकट हो गए थे उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे। अर्जुन के लिए भगवान के बिना एक पल भी रहना असंभव था ऐसे गोपियों के लिए था। गोपियों ने ब्रह्मा जी को क्या दोष दिया क्या दोष दिया आईलिड्स इंग्लिश में क्या गया ब्लिंक होती है ये क्यों पलक होती है। तो अर्जुन दुखी थे भगवान प्रकट हो चुके हैं उन्होंने उन लीला का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी पर उनके प्रिय मित्र के सहयोग के कारण सफल हुई। उसके पश्चात अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया। जब उन्होंने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया उन्हें ऐसे लगा कि स्वयं भगवान वहां ही उपस्थित हैं। गीता के श्लोकों का स्मरण कर रहे थे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जैसे कि अर्जुन ने भगवान के गीता के श्लोकों का स्मरण किया उसी प्रकार इस संसार के हर भक्त को गीता के श्लोकों का क्या करना चाहिए स्मरण करना चाहिए। स्मरण आप कर पाओगे अगर आप सुनोगे और पढ़ोगे अगर सुनोगे और पढ़ोगे नहीं तो किस वजह का स्मरण करोगे ठीक है ना इसे पढ़ना आवश्यक है। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो और भगवान की अनेक लीलाएं हैं पर हर लीला अद्भुत है। उदाहरण ले गोवर्धन लीला भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जब उठाया कोई साधारण व्यक्ति स्वीकार करेगा इसे आप कितने भी पहलवान हो सीमा है आप कितना वजन उठा सकते हो। गोवर्धन पर्वत आज 23 किलोमीटर लंबा है उस समय भगवान पृथ्वी पर थे इतना विशाल था कि गोवर्धन पर्वत की चोटी आकाश तक पहुंच गई थी आकाश तक। आज आप भगवान की चोटी को बड़ी सरलता से देख सकते हो जब भगवान पृथ्वी पर थे आकाश तक छूटी थी और उस पर्वत को भगवान ने कितने हाथों से उठाया एक ही उंगली से बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून के बल पर उंगली के बल पर भी रहे। और उस समय इंद्र के क्रोध के कारण तेजी से बारिश बरस रही थी और ब्रजवासियों को डर था पहले तो भगवान ने कहा आ जाओ गोवर्धन पर्वत की छाता के नीचे, और फिर इतनी तेजी से बारिश बरस रही थी क्योंकि इंद्र ने समुद्र का बादल को आदेश दिया था जाओ ब्रिजवासी में डुबा दो। तो ब्रिजवासी डर रहे थे भगवान के हाथों से पहाड़ तो नहीं गिर जाएगा। तो भगवान ने उन्हें कहा घबराओ मत डोंट वरी पहाड़ नहीं गिरने वाला। और फिर अंत में इन्होंने स्वीकार किया फिर मुड़ गया। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनका हमें क्या करना चाहिए। हाँ, और इन लीलाओं को आप पढ़ना चाहते हो तो कृष्ण बुक में है। क्या है लीला? भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ किन किन के पास है? गुजराती में हो हिंदी में हो पढ़ोचे पढ़ते हो रोज पढ़ो एक अध्याय एक लीला रोज पढ़ो एक लीला रोज पढ़ोगे तो ध्यान। तो आगे क्या कहते हैं? भक्ति की विधियों का पालन करो। ये जो नियम आपको दिए जाते हैं जाने अनजाने इनका पालन करो और वैसा निंदा से बचो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कि भक्ति का जो सुंदर बगीचा है ये नष्ट हो जाएगा किसके माध्यम से? वैष्णव। हमें बड़े ध्यान से चलना चाहिए कि वैष्णव अपराध नहीं करें। महा लोगों ने क्या कहा? मुझे इंद्र के थंडर बोल्ट का भय नहीं है तो मुझे किसी वैष्णव अपराध किसी वैष्णव बड़े अपराध करूं तो किसका भय है? तो हम दो बची हैं इसे बचना चाहिए। आगे हमें सादा जीवन बिताना चाहिए। आध्यात्मिक नियम क्या है? सादा जीवन ऊंचा विचार। हाँ समझे आप? सादा जीवन बिताओ और ऊंचे विचार। ऊंचे विचार का अर्थ है ये स्मरण ये चिंतन ये भाव कि हमने आध्यात्मिक उन्नति करना है। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे भगवान के शरणागत होने के विषय में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहला नियम यह होना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करें जो प्रतिकूल है उसे त्यागें। और इसी विषय पर रूपा गोस्वामी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र जो भी कीमत भरनी पड़े भरो कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। ये होना चाहिए हमारा भाव। तो यहाँ कहा जा रहा है आपको सादा जीवन बिताना चाहिए। तो हमारा नियम है सादा जीवन और कैसा विचार और भौतिक जीवन का क्या है नियम? ऊंचा जीवन सादा विचार। जेब काटो बैंकरप्सी करो चापलूसी करो लाखों झूठ बोलो हमें धन कमाना है। क्यों? ऊंचा जीवन चाहिए। नई मोटर नया मकान महंगे वस्त्र ये बताना है समाज में हम कितने धनी है ना। ये है ऊंचा जीवन। सादा विचार पशु समान कहां है की सुविधा। हमारा भाव होना चाहिए जीवन और ऊंचे विचार। तो संक्षेप में इस श्लोक में संत कुमार हमें उपदेश दे रहे हैं जो भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहे उन्हें किस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो संक्षेप में क्या कहा संत कुमार ने? क्या क्या कौन कहेगा? पढ़े पढ़े देखे बिना देख सकते
अहिंसक।
क्या क्या भाव? पहला क्या था? दूसरा मान जाने के लिए, तीसरा
कृष्ण लीला का स्मरण करो,
आगे
सादा जीवन, निंदा ना करो,
ऐसा निंदा नहीं करना, अपराधों से बचना, और
सादा जीवन,
और भक्ति की विधियों का पालन करना, विधियों का पालन करोगे महाप्राण के बन। तो जैसे आप जानते हो ये है प्रचार का महीना, कल भी हमने आपसे निवेदन किया था ग्रंथों की मित्र की सेवा करने के लिए। तो आप जैसे जानते हो हमारे आचार्यों ने इस सेवा पर बहुत बल दिया है। इसका कारण क्या है? प्रभु को ज्ञान मिलेगा, जीवन सफल होगा। जब आप प्रचार के कार्य में जुड़ते हो ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका साथ देगा। हम सब भक्तों की इच्छा तो ये रहती है हम जब बाहर जाएंगे सब आके लड़ेंगे कहेंगे पिता पहले हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो। तो अभ्यास किया है, आप 20 आदमी से बात करोगे तो एक या दो बोलेंगे। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, किसी रिपोर्टर ने पूछा इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो परफेक्ट व्हाई इज इट ऑल फुली पैक्ड, अगर आपकी कृष्णा भक्ति में इतना दम है तो हॉल पूरा भरा हुआ क्यों नहीं है? प्रभुपाद ने कहा when you are selling diamond only few will buy, when you are selling imitation jewelry thousands of people will buy. जब आप असली हीरा बेच रहे हो आप तो हीरे के व्यापारी हो, असली हीरे के ज्यादा व्यापारी होते हैं, ज्यादा ग्राहक होते हैं, नकली के तो बहुत सस्ते हीरे के बहुत होते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति हर व्यक्ति तो लेगा नहीं, पर हमारा प्रयास है ये संदेश क्षेत्र ने माँ बाप ने इस वर्ष में क्या कहा जाने दाखो जैसे भी तुम मिलो क्या कहो। क्षेत्र ने माँ बाप ने एक दिन हरिदास नित्यानंद को बुलाकर कहा हरिदास नित्यानंद तुम घर घर जाओ और हाथ जोड़कर लोगों से क्या कहो बोलो कृष्णा बाजो कृष्णा बोलो कृष्ण शिक्षा, कृष्णा का नाम लो, कृष्णा की उपासना करो, कृष्णा की शिक्षा लो। आगे उन्होंने कहा लोगों को कृष्णा ही तुम्हारा प्राण है, कृष्णा ही तुम्हारा असली धन है, कृष्णा के संतुष्ट ही जीवन का लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार हरिदास हरिदास से अपरिचित हो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दोनों ने सन्यासी के वस्त्र पहने और घर घर जाकर प्रचार करने लगे। कई घरों में हो गए लोगों ने बड़े आदर से स्वागत किया और कहा संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बताइए हम क्या कर सकते हैं। है ना ठीक है, और है ना मुझे रोज करेंगे कृष्ण की पूजा करेंगे और कृष्ण की शिक्षा तो गीता में है उसे अपनाएंगे। कई घर में गए लोगों ने उनका एक रूप से अपमान किया, उन्होंने कहा ये निवाई तो पागल हो गया है, इनको भी पागल बना दिया, अब इनको भेजना हमें पागल बनाने के लिए। पागल क्यों? इनाम ले रहे थे। और कई घरों में गए उन्होंने कहा जो हमने प्रयास किया था शिवा संगम में प्रवेश करने के लिए कि तुमने रोक दिया था अभी अंदर आने से, इसके पीछे लंबी कथा है, अभी समय का भाव है, तो तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। और कई घर में गए लोग लगता है, ये लगता है चोर के मित्र हैं, आ रहे हैं घर में देखने के लिए क्या है, हैं जासूस, वे आएंगे चुराने के लिए। यार किसको लगा रहे थे, किसको किसको इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम प्रचार करने जाएंगे अगर कोई जितेंद्र हरिदास की अपमान कर सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो, हमें तो जूते खाने चाहिए। जितेंद्र हरिदास को कहते तुम चोर के प्रतिनिधि हो, पागल हो। जब आप प्रचार करने जाते हो कहीं आपका स्वागत करेंगे, कहेंगे आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, कहीं आपका अपमान भी करेंगे, कहीं ये भी कहेंगे वो कोई काम धंधा नहीं है, हर साल आ जाते तो जैसे हम समझा रहे थे हमारे क्या कहने सब वक्त में सब सुप्रिय कौन है, हमें हम प्रचार कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा मौका है प्रचार का। गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटने के लिए, क्यों एक ही भाव लोग इस ग्रंथों को पढ़ेंगे और ये निर्णय करेंगे हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। भक्त का यही भाव रहता है कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए किसके साथ, भगवान की सेवा के साथ। तो आप सब जो भगवान की कृपा चाहते हो, जैसे हम कल कह रहे थे कई बार लोग बोलते शॉर्टकट, कोई भक्ति में आगे बढ़ने का शॉर्टकट नहीं है, एक शॉर्टकट है भगवान के प्रचार की सेवा में जुड़ो। तो इस सेवा में जुड़िए और भगवान की सेम कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.